هذه اللي اسمها هذاك اسمه هذاك
एक बोटी सब एक दो बोटी मेरे पास कॉल थे और एक दो बोटी परिक्रमा पर चौरास को उसकी परिक्रमा कर रहे थे तो उनका अचानक बहुत तबीयत खराब हो गया तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ता फिर बहुत डेंजरस समझता बहुत सीवियर हो गए तो बोले भक्तों से प्रार्थना करें तो क्लास के बाद में थोड़ा
हमारी जो चौरासी कोस की धाम की परिक्रमा चल रही है उसमें एक भक्त बहुत सीरियसली बीमार हो गए हैं तो वहां से प्रार्थना आई है कि यहाँ पे हम सब भक्त उनके लिए प्रार्थना करें तो हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ये भक्त के लिए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
थैंक यू तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाल्यमलाम्बरा हिरण्मयेन पत्रेण सिद्धमादाय पायसम् तस्मात् उस अग्नि से पुरुषः पुरुष उत्तस्थ प्रकट हुए हेममाली सोने का हार पहने अमल अंबर श्वेत वस्त्रों में हिरण्मयेन सुनहले पात्रेण पात्र से सिद्धम पकाया हुआ आदाय लाकर पायसम खीर अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुए वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए थे ये था 36वां श्लोक अब 37वां लिखा है ना यहां स विप्र अनुमत
राजा
ग्रहित्वा अंजलिना स विप्र अनुमत
राजा
ग्रहित्वा अंजलिना ओदनम अवद्राय मुदा युक्ता प्रदात पत्ने उदारधि स विप्रानुमतो राजा ग्रहित्वाञ्जलिदोलूनाम् अवद्राय मुक्ता मुदा युक्ता प्रदापत्नया उदारधि
सह वह विप्र ब्राह्मणों की अनुमत अनुमति से राजा राजा ग्रहित्वा लेकर अंजलिना अंजलि में ओदनम खीर अवध्राय सूंकर मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक युक्त सहित प्रदात प्रदान किया पत्ने अपनी पत्नी को उदारधि उदार हृदय। ट्रांसलेशन, राजा अत्यंत उदार था, उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। प्लीज रिपीट, राजा अत्यंत उदार था, उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब ये राजा को उदार क्यों बताया गया है, आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की इस प्रसंग में उदारधि शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता यह आशीष ग्रहण करने की पात्र न थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त वह खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। प्रत्युत सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व योजित होता है, जैसा कि बाद के श्लोकों में बताया जाएगा। यह घटना राजा के लिए हितकर नहीं हुई, क्योंकि राजा अत्यंत उदार था, अतः इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक क्रूर पुत्र जन्म ले। जिससे राजा को ग्रह त्याग करना ही पड़ेगा। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छा पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा वे एक भिन्न विधि से पूरी करते हैं, जिससे कि वह धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। इसकी पुष्टि भगवद गीता से भी होती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ति ते। भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वह आगे प्रगति करता रहे, जिससे वह वापस घर की अर्थात भगवान के धाम जा सके। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कर्मायं ददाति स्वपदं तिकं देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवाश्च रूपं साग्र जातं सागनातं तं सजीवं साध्यतां सार्वदूतां हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपदां करुणामृतां शिक्षाकारिकांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। दरुगश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो पहले श्लोक में 36वें में बताया गया, अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से एक सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। यहां क्या हो रहा है कि अंग महाराज पुत्र प्राप्ति की इच्छा करें, जैसे कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में आपने सुना है, सभी ने। रामायण में महाराज दशरथ ने भी ऐसा यज्ञ किया था और उसमें से भी एक खीर का पात्र लेके यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुए थे और उन्होंने वो खीर का पात्र महाराज दशरथ को दिया और उस खीर के पात्र से भगवान श्री राम और अपने तीनों भाइयों के साथ प्रकट हुए। ऐसे ही यहां पे महाराज अंग, अभी ये उस समय की बात है कि अभी तो दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ है, दशरथ के तो पूर्वज से आ गए। तो महाराज अंग ये एक यज्ञ कर रहे हैं जिससे कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। यहां पे कथा बताने वाले कौन है, कोई बता सकता है? हाथ ऊपर करना है। कथा कौन बता रहा है भागवतम में? अपने हाथ ऊपर किया है। सुखदेव गोस्वामी? हाँ, सुखदेव गोस्वामी तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं हाथ ऊपर करके बताने का? विदुर जी को हाथ ऊपर करके एकदम से नहीं बताना, जब हाथ ऊपर करके कहा जाए आप बताओ तो बताओ। मैत्रेय बता रहे हैं विदुर जी को। और प्रश्न क्या पूछा गया है विदुर जी के द्वारा? प्रश्न पूछा गया है प्रचेताओं के बारे में। विदुर जी क्या जानना चाहते हैं? प्रचेताओं के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन बताया जा रहा है अंग के बारे में, क्योंकि ये कथा ध्रुव महाराज से शुरू हुई है, उन्हीं के परिवार में आगे प्रचेता आने वाले। तो बीच के भी जेनरेशन में बहुत सारे जेनरेशन हैं, उन सब के बारे में जरा जरा सा बता रहे, लेकिन खाली नाम ही। लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग हैं बीच में, जो भक्त हुए हैं या भगवान के अवतार हुए हैं या बहुत दुष्ट हुए हैं, अवक्त विशेष तौर पे उनकी थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करते हुए महर्षि मैत्रेय बता रहे हैं विदुर जी। तो इनके परिवार में आगे ये अंग की चर्चा है, और अंग के घर ये पुत्र जो इस यज्ञ से उत्पन्न होगा, कौन उत्पन्न होगा? हाथ ऊपर किया, वेन उत्पन्न होंगे। अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा अत्यंत उदार थे, पुरोहितों की अनुमति से खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघकर उसको एक भाग, उसका एक भाग पत्नी को दे दिया। सूंघ क्यों लिया बीच में? सूंघने से भी टेस्ट करने का वो होता है। अगर आपने कोई चीज सूंघ ली तो अब वो आप अपने गुरुजन को या किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि एक तरह से आपने ग्रहण कर ली। और कहीं अगर उसमें फूंक मार दी तो बस, फूंक मार दी तो बिल्कुल पूरी तरह से झूठा कर दिया, अब किसी को नहीं दिया जा सकता। लोग 60-70-70 साल के दुनिया भर की बीमारियां शरीर में हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं और उसमें मोमबत्ती में फूंक मारते हैं और फिर वो सबको बांटते हैं, सब आओ सब खाओ मेरा जूता, मेरी सब बीमारियां ले जाओ सब, आपके ले जाने से मेरी घटेंगी नहीं, मेरी तो वैसे भी बढ़ रही, लेकिन आप भी मेरे साथ में आ जाओ। वैष्णव कभी ऐसा नहीं करते, कभी भी केक में फूंक नहीं मारते, अगरबत्ती को कैसे बुझाते हैं? ऐसे ही बिना फूंक मारे। जैसे कि हम अगरबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं उसमें? नहीं। क्यों नहीं मारते? क्योंकि अभी वो भगवान को ऑफर करनी है, फूंक मार दिया तो ऐसे ही मोमबत्ती में फूंक मारना है, क्योंकि या तो केक पहले से भगवान को ऑफर्ड है तो वो प्रसाद है, वो जो भक्त लोग आपका बर्थडे मनाने के लिए आए हैं वो ग्रहण करेंगे, उनको आपके थूक की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़े हो वो छोटे हैं तो केवल आशीर्वाद दे दो बिना थूक के, वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसलिए सूंघ लिया। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रसंग में उदारधी शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता, ये वो नहीं है, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, ये वो वाली नहीं है। कौन सी है? सुनीता, नॉट सुनीता। वो जो बर्थडे वाली है वो सुनीता है, ये सुनीता है। राजा की पत्नी सुनीता, यह आशीष ग्रहण करने की पात्र ना थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। अब श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं बताया कि वो पात्र क्यों नहीं थी, आशीष ग्रहण करने की पात्र ना थी। कौन बता सकता है? बताना नहीं है, हाथ ऊपर करना। कौन बता सकता है क्यों नहीं थी पात्र? क्यों? क्योंकि उसने राजा को सुन लिया। यस, और कोई? कोई कुछ बोल रहा है बिना हाथ ऊपर करे? फोन पे तो बात नहीं कर रहे? कोई नहीं? पुरुषों की तरफ? यस, ओ सॉरी, किसको तंग करती थी वो? अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो माताजी ने बताया आगे के ये, जैसा दूसरे माताजी ने भी बताया, ये जो सुनीता है ये मृत्यु की पुत्री है, मृत्यु की पुत्री। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये एक धार्मिक राजा को जन्म देने के लिए सुयोग्य पात्र नहीं थी, ऐसा आगे शिल्पोपाद बता रहे। तो क्षत्रियों में, जैसा कि हम वेदों में देखते हैं सुनते हैं, हमें इंप्रेशन ये लगता है कि जो पिता है वो ही सब कुछ है, क्योंकि पुत्र को पिता का नाम मिलता है, उसकी धरोहर मिलती है, उसके परिवार से उसका नाम जोड़ा जाता है, पिता का नाम आगे उसके पुत्र से चलता है। लेकिन यहां पे बताया गया है कि माता का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी स्त्री से उसको देख के विवाह का प्रस्ताव नहीं किया जाता, उसके परिवार को देख के। पुरुष को भी केवल उसको देख के विवाह का प्रस्ताव हमें नहीं करना चाहिए, पूरे परिवार को देख के किस तरीके की बैकग्राउंड है। तो आगे आने वाली संतान जो हमारे घर में होगी वो इसी स्त्री से होगी, और उस संतान में उसके परिवार के गुण आने के भी पूरे चांसेस हैं। जैसे कि रावण किसका पुत्र था? पुलस्त्य। विश्वश्रवा पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र था, और विश्रवा क्या थे? प्रकांड ब्राह्मण, उच्च कोटि। पुलस्त स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनके पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र दूसरी पत्नी से कुबेर, जो व्यक्ति के रूप में, जीव के रूप में, आम आप और मैं के रूप की तरह से जन्म लिया और देवताओं का कोष अध्यक्ष बना के उसको देवता की कैटेगरी में डाल दिया गया। देवता हो गए, जन्म से देवता नहीं थे, देवता बना दिए गए। ऐसे परिवार में रावण का जन्म हो रहा है और कुंभकर्ण का, क्यों? क्योंकि रावण की मां, रामायण में बताया जाता है, कैकसी हमारे भागवतम में बताते हैं, केशनी, लेकिन एक ही है, अलग अलग नाम से, लगभग नाम सेम ही है, लेकिन केशनी या कैकसी। वो किसकी पुत्री थी? राक्षस की। तीन भाई थे राक्षस, माली, सुमाली और माल्यवान। माल्यवान का नाम सबने ज्यादा सुन रखा है क्योंकि रामायण में माल्यवान का नाम आता है। माल्यवान रावण के नाना थे, और जब रावण को मार दिया भगवान ने, तो सारा राजकोष, राजतिलक, स्वर्ण मुकुट लेके माल्यवान ही भगवान के पास आए कि अब आप हमारे राजा हैं, हमारे राजा को आपने मार दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं तो पहले से ही विभीषण को दे चुका हूं। तो माल्यवान असली नाना नहीं है, नाना का भाई है। तो ये सोमाली की पुत्री है कैकसी या कैशनी। राक्षस कुल में शक्ति प्राप्त हो, राक्षस कुल का उद्धार हो, इसके लिए उन्हें एक महाभयंकर राक्षस की आवश्यकता थी, और उनको यह पता था कि पुलस्त के कुल को ये श्राप है कि उसके घर दैत्यों का जन्म होगा। तो केशनी ने जाके विश्रवा से विवाह के प्रसंग की बात की, और जब विश्रवा को बाद में ये पता चला, ओ ये तो राक्षसी है, ये मेरे से दो राक्षस शक्तियों का जन्म चाहती है, जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण। तो उन्होंने अपनी पत्नी से एक प्रार्थना की कि अब जो तुझे चाहिए वो तो तेरे को मिलेगा ही, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करके एक पुत्र और दे देना मुझे। और उसमें उन्होंने विभीषण को मांग लिया। तो विभीषण में पूरी तरह से विश्रवा के गुण थे, विभीषण पूरी तरह से सत्व गुण में स्थित थे और शुद्ध सत्व में जाने की बात थी। वेयर एज रावण और कुंभकर्ण दोनों दूसरे गुणों में पूरी तरह से स्थापित थे। कौन कौन से गुण में स्थापित था कोई बता सकता, कौन बता सकता है हाथ ऊपर करके? आगे वाली माता जी के अलावा, वो पीछे वाली माता जी, बोलो बोलो बोलो, तमो, कौन? अरे दोनों के अलग अलग गुण है। बातें नहीं करनी, हाथ ऊपर करना है। मैंने कहा आपसे बताओ, रावण नहीं, कुंभकर्ण तमोगुण में और रावण रजोगुण में, ठीक बताया? कैसे? थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो क्लियर कर देते हैं। तमोगुण का अर्थ होता है ज्यादा करके निद्रा, होश नहीं, अज्ञान, निद्रा। वो कुंभकर्ण का आभूषण थी, छह महीने सो के एक दिन के लिए जागता भी था और वापस छह महीने के लिए सो जाता था। और रजस की ऐसे और भी बहुत सारे गुण हैं जो तमस में होते हैं, भोजन उस तरीके का और सब चीज। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, आलस्य, निद्रा सब वही है। और रजस में ज्यादा करके सबसे बड़ा दोष रजस का क्या है? लोभ। लोभ जिसका कोई अंत नहीं। रावण के महल में सैकड़ों के हिसाब से रानियां थी, लेकिन उसको फिर भी सीता चाहिए। लोभ पूरा नहीं, सारी पृथ्वी का राज्य, सारे पाताल लोगों का राज्य और स्वर्ग पे भी उसका आधिपत्य था, लेकिन क्या चाहिए? अभी और चाहिए, उससे भी संतुष्ट नहीं है, कभी ना खत्म होने वाला लोग। तो उनका तीसरा भाई बिल्कुल सत्वगुण में, सुबह को जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, भगवान नाम का जप, मंगल आरती, गुरु पूजा और भागवतम क्लास, तुलसी आरती, जैसे आप सब लोगों सत्वगुण में ऐसे। तो रावण और कुंभकर्ण के ऊपर इफेक्ट किसका आया? उसकी, उनके मां के कुल का। तो इसलिए मां का कुल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे पांडव हैं, क्यों कहते हैं पांडव पांडवों को? क्योंकि पांडु के पुत्र हैं। क्या वास्तव में पांडु के पुत्र हैं? क्योंकि पांडव की पत्नी के पुत्र हैं तो पांडव के पुत्र हैं। दैट्स गुड एनफ कि पांडु की पत्नी के पुत्र हैं तो पांडु के ही पुत्र हैं। वो एनफ है। महाभारत में जैसे जिसका पात्र था वैसे पुत्र का जन्म हुआ। पहली रानी ने आंख बंद कर ली महर्षि वेदव्यास को देख के, पुत्र धृतराष्ट्र पैदा हुए अंधे। पांडु और फिर जब एक ने दासी को भेज दिया तो दासी पुत्र हुए विदुर। तो माता का बहुत महत्व है, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार। कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं नहीं माता को तो इतना महत्व नहीं दिया जाता, केवल पिता ही पिता की बात होती। नहीं नहीं, माता का भी बहुत महत्व है, वो हम यहां पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आशीष ग्रहण करने की पात्र नहीं भी थी फिर भी राजा इतना उदार था। उदार इसलिए कि राजाओं की कोई एक पत्नी थोड़ी होती है, वो तो किसी को भी दे सकता था। कौन कह रहा है कि ये अंग एक पत्नी व्रत धारण किए हुए था महाराज राम की तरह। महाराज राम ने, भगवान राम ने एक पत्नी का व्रत लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आमतौर पे कोई भी राजा ऐसा कोई व्रत नहीं लेता, राजा तो भोग में होते हैं, कभी एक पत्नी का व्रत लेना या ऐसा कुछ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राजा से मिलना भी नहीं चाहते थे, साक्षात्कार भी नहीं, दर्शन भी नहीं देना चाहते थे कि मैं तो सन्यासी और राजा होता है क्या भोगी, मुझे उसका सानिध्य नहीं चाहिए, मेरे पास नहीं लाना, मुझे नहीं मिलना राजा से, जाओ। लेकिन जब राजा ने अग्नि प्रवेश करने का निश्चय किया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा ये आम राजा नहीं, इसको आने दो, कोई बात नहीं, इससे मिल लूंगा मैं। और जब राजा ने पूछा कि आपने जो वाणी है आपकी बताया है कि हरि नाम का प्रचार हर गांव और हर शहर में सारे संसार में होगा, वो कैसे होगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि एक एम्बेसडर जन्म लेगा जो ये कार्य सारे संसार में करके आएगा। जिसकी भविष्यवाणी की थी उनका पिक्चर मेरे पीछे लगा हुआ है आपके लिए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया था बिना श्रील प्रभुपाद का नाम लिए कि कोई ऐसा महानुभाव जन्म लेगा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का झंडा सारे संसार में लगा के आएगा, सारे संसार में। और आज शायद कोई ऐसा देश है जहां पे हमारे भक्त हरिनाम संकीर्तन नहीं निकालते, इवन मुस्लिम कंट्रीज, इवन धर्म निरपेक्ष जहां धर्म को इलीगल माना जाता है वहां भी हमारे भक्त लोग जाके छुप छुपा के किस तरह से हरि नाम निकाल लिया थे। और आगे आने वाले 10,000 वर्षों तक ये हरि नाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से और आप सब भक्त लोगों के कार्य में लगने से, सेवा करने से, सेवा में लगने से। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बिना हिचक उसने अपनी पत्नी को सुनीता को वो दे दिया। सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व योजित होता है, जैसा कि बाद के श्लोकों में बताया जाएगा। यह घटना राजा के लिए हितकर ना हुई। कैसे हितकर ना हुई, क्योंकि पुत्र मिला तो वेन जैसा। क्या था वेन? अधर्मी, दुराचारी, अत्याचारी, बचपन में ही अपनी ही उम्र के बालकों को अपनी ही क्लास में पकड़ के गला काट के वध कर देता था। बचपन में ही, छोटे बच्चों को भी नहीं, अपने ही साइज के, निर्दयता से जानवरों की तरह इंसानों को बचपन से ही मारता था। किसी को लात मार दी, घूसा मार दिया, वो बात तो दूर, सीधा तलवार या चक्कू लेके सर कलम कर दिया। ऐसे ही मजे के लिए या निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए लोग कोई चीज रख के निशाना लगाते हैं, या कोई चिड़िया या कोई जानवर का शिकार करने भी निशाना लगाने के लिए भागता हुआ निशाना कैसे लगाया जाएगा, ये सब चीज करते थे और ये प्रैक्टिस भी करता था। तो ह्यूमंस पे धनुष बाण लेके कहीं भी निकल गया और आते जाते को कहीं भी निशाने की प्रैक्टिस कर दी, मैं तो राजकुमार हूं यहां, मैं तो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपके जूतों का रंग मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने शूट कर दिया, अब जाओ जिसको जो करना है करो। और जब राज्य मिल गया तो हवन आदि भी बैन कर दिए, वैन ने बैन कर दिया, कोई हवन नहीं होगा इस राज्य में। आगे सातवें स्कंद में इसका जिक्र आता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि से के ये जो शिशुपाल है इतना पापी अपराधी भगवान से ईर्ष्या करने वाला और ऐसे व्यक्ति को इसके शरीर में से, जैसे इसका वध किया भगवान ने, इसके शरीर में से जो ज्योति निकली वो सीधा हमने भगवान के चरणों में विलीन होती हुई देखी। ये तो इतना ज्यादा पापी था कि वैन भी इतना पापी नहीं था। क्यों? वैन ने डायरेक्ट भगवान के प्रति तो कोई अपराध नहीं किया, जो अपराध किया मानवता के प्रति किया, ऐसे मानवता के प्रति भी अपराध भगवान के लिए ये, क्योंकि हम सब भगवान की ही संतान है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट भगवान के ऊपर बुरे शब्द अपवचन, सारे राजाओं का समाज सब एकत्रित है और वहां आप सबके सामने साक्षात भगवान को गाली दे रहे। तो युधिष्ठिर महाराज की निगाह में ये कहीं ज्यादा बड़ा अपराध था कि वेन को तो सायुज्य मुक्ति नहीं मिली और ये जो वेन से कहीं ज्यादा अपराधी है इसको सायुज्य मुक्ति, ऐसा कैसे हो गया? तो शॉर्ट में नारद मुनि बताते हैं कि चाहे ये शिशुपाल ईर्ष्या करता था भगवान से जन्म से ही, लेकिन फिर भी ईर्ष्या में भी याद हमेशा भगवान को ही करता था। चाहे आप ईर्ष्या के भाव से याद कर रहे हो लेकिन याद तो भगवान को ही कर रहे हो, या भय से याद कर रहे हो लेकिन याद तो भगवान को ही कर रहे हो, शत्रुता से भी याद करो और भगवान को, तो भगवान उसमें भेदभाव नहीं रखते, ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि किसी भी तरीके से इन लोगों ने भगवान को याद किया। भय से किसने याद किया भगवान को हर समय? कंस, हाथ ऊपर किया था आपने, कंस ने हमेशा भय से भगवान को याद किया, उसको भय भक्ति देनी थी इसलिए भगवान ने अभी अपना जन्म होने में 10 साल बाकी है पहले ही आकाशवाणी करवा दी कि जा तेरा काल इसी बहन के गर्भ से जन्म लेगा, तभी भयभीत कर दिया उसको। अब उसका बाकी का सारा जीवन पूरी तरह से भय में, उसे हर जगह कहीं से चक्र आता नजर आ रहा है, कहीं से गदा आती नजर आ रही है भगवान की, कहीं भगवान का शंख आता नजर आ रहा है, हर समय भगवान से भय। लेकिन हर समय याद किसको कर रहा है? भगवान को। याद तो भगवान को ही कर रहा है। यहां पे कोई है जो हर समय भगवान को याद करता है? कोई वॉलंटियर नहीं है? ज्यादातर समय याद किसकी आती है? थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति, थोड़ा बहुत घर परिवार, थोड़ा बहुत शरीर, ये वो, कुछ बुराई नहीं है। लेकिन इसलिए हम भगवत सेवा में लगे हैं कि किसी तरह से हमें और कुछ नहीं तो केवल अपनी भगवत सेवा की याद आए। और अगर भगवत सेवा की याद आती है तो वो भी भगवान की याद आने के बराबर है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भगवान को याद ही नहीं करो, लेकिन मैं खाली कह रहा हूं कि जब हम भगवत सेवा को याद करते हैं उसको भी भगवान की याद करने के बराबर ही है। क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम इतना ज्यादा डायरेक्ट भगवान को याद करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें ये रास्ता बताया, क्या 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और उसके बाद क्या टल्ली हो जाओ? नहीं, उसके बाद 8 घंटे डिवोशनल सर्विस, भगवत सेवा 8 घंटे और, तब आप कैसे कहा मैं फुल टाइम ड्यूटी। तो वो 8 घंटे भी जो भगवत सेवा है वो भी पूरी तरह से भक्ति है। और मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम और 8 घंटे भगवत सेवा करी तो बाकी टाइम क्या रह गया? विश्राम का टाइम। और अगर जो इतना हमने किया है तो वो विश्राम भी भक्ति है, वो विश्राम भी भगवत सेवा ही है। उसको भी ये नहीं मानना कि नहीं नहीं ये विश्राम तो मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर लिया, वो विश्राम भी भगवत भक्ति है। अगर जो हम मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, 2 घंटे का जप, 8 घंटे और भगवत सेवा कर रहे हैं तो 24 घंटे उसमें आ गए। क्योंकि उसके अलावा जो हम अपने शरीर के लिए करना पड़ता है, साफ सफाई के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए, वो सब भी भगवत सेवा है। उस तरह से श्रील प्रभुपाद ने हमें 24 घंटे भगवत सेवा का बताया। ऐसा नहीं बताया कि 2 घंटे भगवत सेवा करो और उसके बाद साइन ऑफ, गो इनटू व्हाटएवर, नो, 24 आवर्स डिवोशनल सर्विस। अहेतु की अप्रतिहता, केवल अहेतु की नहीं अप्रतिहता भी। खाली संडेज को भक्ति नहीं, मंडेज को भक्ति नहीं, ट्यूसडे को ये वाला मंदिर, वेंसडे को वो वाला मंदिर, फ्राइडे को वो वाली जगह, वो भक्ति नहीं होती। भक्ति क्या होती है? हफ्ते में 8 दिन, कहां है 8 दिन? 8 दिन इसलिए कि भक्त ये कहता है कि भगवान मैं आपकी भक्ति हफ्ते में 7 दिन नहीं, अगर जो 8 दिन हो तो 8 दिन करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम अगर मुझे किसी तरह से मिल गया तो वो मैं कहीं जाके व्यर्थ गवाऊंगा, नहीं, वो भी मैं आपकी सेवा में ही लगाऊंगा। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, एक तो मेटीरियल एस्पेक्ट या भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण से अंग को, महाराज अंग को एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उसके अगली लाइन में दूसरे दृष्टिकोण को श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, दूसरा भी दृष्टिकोण है। कौन सा? ये वाला दृष्टिकोण है कि यह घटना राजा के लिए हितकर नहीं हुई। और दूसरा दृष्टिकोण है इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक क्रूर पुत्र जन्म ले, क्योंकि जितना भी अच्छा पुत्र होगा उतना ही ज्यादा मोह का कारण बनेगा, उतना ही ज्यादा हमारा घर में मन लगेगा। जितनी अच्छी पत्नी होगी उतना ही ज्यादा मोह का कारण, उतना ही घर में मन लगना। और जिसको बुरी मिली उसको भगवान का आशीर्वाद है, चल। मैं नहीं कह रहा मैं तो शास्त्रों में जो बता रहा हूं कैसा बताया जाता है। जैसे कि पहले ही स्कंद में पेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, कैसे कहते हैं हिंदी में, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं या शिक्षाएं। तो क्या है मेन शिक्षा महारानी कुंती की? क्या महारानी कुंती मांग रही है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का? नहीं। मात पिता तुम मेरे जब तक नोट धरो, नहीं तो मैं जाऊंगा शिव के द्वारे और नहीं तो जाऊंगा माता के द्वारे, जल्दी जेब ढीली करो। ऐसी प्रार्थना नहीं है देवी कुंती की। सुख संपत्ति नहीं मांग रही, क्या मांग रही है? दुख, के भगवान मुझे दुख दो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दुख दो। क्यों? क्योंकि जब दुख आएगा तो हम आपको याद करेंगे, और जब हम आपको याद करेंगे तो आप आओगे। देवी कुंती के दुख के लिए भगवान आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे दुख के लिए भगवान नहीं आएंगे। हमारे दुख में भी हमारा साथ देने के लिए, हमारे हौसला अफजाई करने के लिए भगवान आते हैं, खाली हमें महसूस नहीं होता, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो कुंती सुख संपत्ति नहीं, दुख और दीनता मांग रही है। सुख संपत्ति नहीं चाहिए, दुख और गरीबी चाहिए, क्योंकि दुख और गरीबी में हम भगवान को आसानी से याद करेंगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। ये सबको आता है लेकिन दुख में सुमिरन फिर भी आसान होता है और सुख में कठिन। हाँ, जो यहां बैठे उनकी नहीं, सबकी बात हो रही, जो आवाम जो यहां बैठे हैं वो तो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, वो श्रील प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, उनका तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है। श्रील प्रभुपाद से जो जुड़े हैं और जो जुड़े रहेंगे, श्रील प्रभुपाद जरूर उनको भगवत धाम लेके जाएंगे, किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं तो उनकी नहीं करते जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, हम उनकी बात करते हैं जो आम आदमी। आम आदमी बाहर सड़क पे आपको श्रील प्रभुपाद का अनुयायी नहीं मिलेगा। वो बात और है कि अभी कितने जन्म हमारे बाकी हैं भगवत प्राप्ति में या भगवत प्रेम में, लेकिन होगा जरूर। अगर हम श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त से जुड़े रहेंगे। ओके, एनी फाइनल क्वेश्चन? विश्रवा, ओके प्रश्न है, विश्रवा के घर तीन पुत्रों का जन्म हुआ, दो राक्षस क्यों बने और एक महात्मा क्यों बना? तो पहला प्रश्न है कि महर्षि विश्रवा के केशनी से तीन संतान, एक रावण, एक कुंभकर्ण और तो एक विभीषण कहां से आ गए? दो पुत्र ये जय विजय उनके घर होने की पुलस्त को श्राप था ब्रह्मा जी का, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि करो और पुलस्त कहते थे मुझे विवाह नहीं करना। तो ये दोनों श्राप की वजह से विश्रवा के घर में जन्म लिए। वो पुलस्त का डंडा के विश्व, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करो। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को अलग रखो और विभीषण और कुंभकर्ण को अलग रखो।
मतलब रावण कुंभकर्ण हुए विश्वरुचि का जन्म, जो विश्वरुचि का परिवार एक दूसरा जगह में भी तो जन्म ले सकते, उसमें ही क्यों?
पुलस्त को श्राप भी था और जो राक्षस जन्म लेंगे वो राक्षस कुल से लेंगे, तो केशनी ने अपने राक्षस कुल को बचाने का प्रण किया और उसने ये चांस लिया कि पुलस्त के घर में ये दानव जन्म लेने वाले हैं, क्यों नहीं वो दानव मेरी कोख से जन्म ले लेते? अगर जो मैंने विश्रवा से विवाह कर लिया तो मेरे पूरे चांसेस हो जाएंगे कि वो दानव मेरे कोख से जन्म लें, तो वो मेरे परिवार की, मेरे पीहर की शक्ति को बढ़ाएंगे, जिससे कि हम लोग फिर से देवताओं के साथ लोहा लेने में समर्थ हो जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स फाइनल ग्रांटेशन, तो फाइनल ग्रांटिंग या तथास्तु तो भगवान ही करते हैं, उसने तो केवल ये चांस लिया। प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में 1000 देवताओं के वर्षों तक श्रीमद् भागवतम नारद मुनि जी से सुनते रहे एवरीडे। तो भक्त नहीं जन, भक्त नहीं होंगे बनेंगे तो क्या बनेंगे?
हाँ,
क्योंकि उनके माता और पिता दोनों तोते की वजह से राम राम, हरे कृष्णा, राधे श्याम, जो वो तोता आके बता गया, ये कथा हमने पिछली बार बताई थी इसलिए हम इस बार रिपीट नहीं कर रहे। बताया था ना, हाँ, जब तपस्या करने गए तो तोता आ गया, वास्तव में इंद्र का भेजा हुआ, कुछ जगह ऐसा लिखा है कि वो स्वयं इंद्र था, कुछ जगह ऐसा लिखा है कि वो इंद्र का भेजा हुआ था। तो जैसे ही वो भगवान नाम लेता वो रिपीट करता, उसको डिस्टर्ब करने के लिए आया था। तो जब जाके उसने घर पे अपनी पत्नी को बताया तो उसको बहुत आनंद आया। क्या बोलता था तोता? हरे कृष्ण हरे राम बोलता था। हाँ हाँ वो हरे कृष्ण हरे राम। थोड़ी देर में फिर पूछे क्या बोलता था? हरे कृष्ण हरे राम। हाँ हाँ वो हरे कृष्ण हरे राम बोलता था। और इतना भगवान नाम का जप करने के बाद वो प्रहलाद के उसके अपनी माता प्रयादु के गर्भ में स्थापना हुई, तो ऑलरेडी एक अच्छी आत्मा वहां पे आई। और बाद में नारद मुनि ने जन्म से पहले ही प्रहलाद को अपना शिष्य बना लिया और पूरी तरह से भागवतम में पारंगत कर दिया। उसकी वजह से प्रहलाद महाराज को भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था कि आप मुझे दर्शन दोगे चाहे नहीं दोगे, लेकिन मेरा विश्वास आपके अंदर बिल्कुल अटूट है। अपने पिता जैसे महान राक्षस, उसको पता था कि कितनी बार मुझे मरवाने की कोशिश कर चुका है, उसके सामने भी निडर खड़े होकर कह रहे थे कि कहां है तेरा भगवान, कि सब जगह है मेरा भगवान, इस खंभे में भी है, हां इस खंभे में भी है, मैं मार देता हूं अभी तेरे भगवान को। हां ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नितय गौर प्रेमानंद। थैंक यू। Thank you.